नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। विशेष एनआईए अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। बिहार की मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को वापस लेने की मांग को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच संसद के दोनों सदन दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम झारखंड के देवघर स्थित एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। आईएमडी ने आज असम और मेघालय में तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह को उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच अंतिम और निर्णायक टेस्ट मैच का आज लंदन के ओवल मैदान पर खेला जा रहा है मैच। अब समाचार विस्तार से। मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने आज 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया है। एनआईए अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि अभियोजन पक्ष मामला साबित करने में विफल रहा है और आरोपी संदेह का लाभ पाने के हकदार है। अदालत ने कहा है कि इस मामले में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए के प्रावधान लागू नहीं होते। अदालत ने महाराष्ट्र सरकार का घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रूपये और घायल लोगों को 50,000 रूपये का मुआवजा देने का भी निर्देश जारी किया। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव शहर में मस्जिद के पास एक मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोटक उपकरण में विस्फोट होने से 6 लोग मारे गए और 95 अन्य घायल हुए। एक आरोपी के वकील रंजीत नायर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ आरोपों को साबित करने में विफल रहा।
3 अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई, ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए ये भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई।
विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की कार्यवाही शाम 4:30 के लिए स्थगित कर दी गई है, जब दोनों सदन दोपहर 2 बजे आगे की कार्यवाही के लिए दोबारा समयबद्ध हुए तो विपक्षी सदस्यों ने अपना विरोध जारी रखा, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। पहली बार स्थगित होने के बाद दोपहर 12 बजे जब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग करते हुए विभिन्न मुद्दों पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कल सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। श्री नड्डा ने कहा है कि 2008 में मुंबई आतंकवादी हमले पर चर्चा के दौरान तत्कालीन गृहमंत्री और प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था। श्री नड्डा ने यह भी उल्लेख किया है कि मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्पष्ट कर दिया था कि यह तय करना सरकार का विशेषाधिकार है कि कौन सा मंत्री बोलेगा और जवाब देगा। उन्होंने कहा है कि विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन जब मौका आया तो उन्होंने गृहमंत्री का जवाब सुने बिना ही सदन से वॉकआउट कर लिया। श्री नड्डा ने कहा है कि यह विपक्ष के दोहरे आचरण को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच द्विपक्षीय व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। बयान में कहा गया है कि उनके द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में हुई उल्लेखनीय प्रगति का सकारात्मक मूल्यांकन किया और दोनों देशों के लोगों को साझा लाभ के लिए सहयोग और विकसित एवं गहन करने पर जोर दिया। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस 4 अगस्त को भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आएंगे। श्री मार्कोस के साथ प्रथम महिला लुइस अर्नेटा मार्कोस और कई कैबिनेट मंत्रियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों सहित एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस 5 अगस्त को द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मार्कोस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मार्कोस से मुलाकात करेंगे। श्री मार्कोस 8 अगस्त को फिलीपींस लौटने से पहले बेंगलुरु भी जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की 20वीं किश्त शनिवार को जारी की जाएगी। इस संबंध में कल नई दिल्ली में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में इस आयोजन की तैयारी की समीक्षा की गई और यह सुनिश्चित किया गया है कि इसका लाभ अधिकतम किसानों तक पहुंचे।
आज के इस कैबिनेट के फैसले में प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना का आउटले बढ़ा के 6,520 करोड़ किया गया और नए इरेडिएशन यूनिट्स और फूड टेस्टिंग लैब्स 50 इरेडिएशन यूनिट्स एंड 100 फूड टेस्टिंग लैब्स के लिए 1,000 करोड़ रुपीस का अलग से प्रावधान किया गया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज झारखंड के देवघर स्थित एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे दीक्षांत समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं और मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति कल आईआईटी आईएसएम धनबाद में 45 दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वहां वे 20 स्वर्ण पदक विजेताओं सहित अन्य को सम्मानित करेंगी। एक रिपोर्ट।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2019 के MBBS बैच को पहली बार डिग्री प्रदान करेंगी। इसमें 4 गोल्ड मेडलिस्ट शामिल रहेंगे। समारोह में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सहित कई वरीय अधिकारी भाग लेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवघर एम्स के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर NK अरोड़ा करेंगे। कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सौरभ वाशने ने आकाशवाणी को बताया कि यह समारोह न केवल उपलब्धियों का उत्सव होगा बल्कि राष्ट्र सेवा के लिए तैयार हो रहे भावी स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों का उत्साह वर्धन भी करेगा। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता ने राज्य में ऑर्किड की खेती में संभावित साझेदारियों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कल थाईलैंड में भारत के राजदूत नागेश सिंह के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसका उद्देश्य राज्य के ऑर्किड मिशन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना तलाशना है। चर्चा में थाई निवेश को आकर्षित करने, उच्च गुणवत्ता वाले प्लांटिंग सामग्री की आपूर्ति और राज्य में साइंटिफिक एवं कमर्शियल ऑर्किड खेती को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों, स्वयं सहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों को कौशल विकास प्रदान करना है। तिंगोंग वांगपांग गांधीनगर स्थित SIA राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में प्रवेश पाने वाले अरुणाचल प्रदेश के पहले पैरा एथलीट बन गए हैं। वांगपांग को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि वांगपांग ने 7वीं अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 2 स्वर्ण पदक जीतकर अरुणाचल प्रदेश और देश को गौरवान्वित किया है। इस बीच अरुणाचल पैरालंपिक संघ ने वांगपांग की उल्लेखनीय प्रतिभा को मान्यता देने और अधिक समावेशी खेल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को धन्यवाद दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने आज असम और मेघालय के बहुत भारी बारिश की अनुमान व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अगले 6 से 7 दिनों के लिए पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इस बीच राजस्थान में भी आज भारी बारिश और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 20 जिलों ईस्ट कमिंग, वेस्ट कमिंग, कुरुंग कुमे, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, शियोमी, कमले, सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लपारादा, लोअर दिवांग वैली, अंजाव, लोहित, नामसाई, चंगलांग, तिरप और लोंगडिंग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। राष्ट्र आज अपने महान क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह को उनके 86वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और भारत आज लंदन के ओवल मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी और निर्णायक क्रिकेट टेस्ट मैच में एंडरसन तेंदुलकर की 5 मैचों की टेस्ट सीरीज बराबर करने की कोशिश करेगा। अंतिम समाचार मिलने तक भारतीय टीम बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 44 रन बना चुकी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।